अभी अपने ख्यालों से बाहर आते, कहीं नहीं, आरवी, लो कर लो बात, विनीत जी गायब हो गए हैं, खो खुद गया है, फोन क्यों नहीं उठा रहे बता? हाँ तो मुझे क्या पता, बंद आ रहा है उनका फोन। तभी वर्तिका बोल पड़ी, छोड़ो आरवी, खाने के टाइम तक वीनू आ जाएगा, वैसे भी रामू काका आज किसी दोस्त के घर गए हुए हैं, तो अकेला तो घर पर रुकने से रहा और खुद बनाकर भी खाने से रहा, यहीं आएगा। हम बिल्कुल, खाने की खुशबू उनको खींच लाएगी। राधे, हाँ हम विनीत बाबा के लिए भी बनाएंगे, अभी तो शुरू करें। आरवी, करो करो मैं आती हूँ, कि तीनों उसकी ओर देखने लगे। आरवी हंसते हुए बोली, अरे सच में वापस आऊंगी, भाग नहीं रही। वर्तिका, भाग भी नहीं सकती, अभी उठा लाएंगे। जरूरत नहीं पड़ेगी, बस दादी माँ को देख कर आ रही हूँ, वो सो रही है ना, उठ गई तो पूछा हम कुछ चाहिए तो नहीं। राधे, फिर तो जल्दी जाओ, कुछ चाहिए हो तो बता देना, हम बना देंगे फटाफट, जाओ यहाँ हम संभाल लेंगे। जी हम आए, आप लोग शुरुआत कीजिए, आकर हाथ पटाते हैं। आरवी वहाँ से चली गई और वो तीनों भी अपने अपने काम लग गए। हॉल में किचन की बाईं तरफ वाले कमरे में जाकर आरवी वापस कमरे से बाहर आ गई, जिसमें शांति जी ठहरी थी। दादी माँ तो अभी तक सो ही रहे हैं, लगता है सफर में बहुत ज्यादा थक गए हैं, बहुत दिनों बाद सफर किया ना, माना फ्लाइट से आए, पर जो लोग कभी कभार घर से बाहर निकलते हैं वो वैसे ही थक जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं रोज बाहर जाने वाले लोगों के मुकाबले, आदत जो नहीं होती। दादू भी तो ऐसे हैं दादी माँ जैसे, इसलिए तो बाहर जाने से बचते हैं। उठ जाएं दादी माँ, फिर पैरों में तेल लगा दूंगी, आराम मिल जाएगा। आरवी खुद से बोल रही थी तभी उसकी नज़र अयांश पर पड़ी, जो कि दो आदमियों के साथ बाहर की ओर से अंदर आ रहा था। दोनों आदमियों ने एक बड़ा सा बॉक्स उठाया हुआ था। ये क्या है, कहते आरवी हैरान होते अयांश की तरफ बढ़ गई। तभी दिनकर जी भी अपने कमरे से बाहर चले आए, चाचू चाची मालती भी ऊपर से आ ही रहे थे। अयांश ने दोनों आदमियों से उस बॉक्स को बीच हॉल में रखने को कहा। अयांश ने जैसा कहा उन्होंने किया और अयांश का इशारा पाकर वो वहां से चले गए। आरवी उनको जाते देख बॉक्स की ओर इशारा करते अयांश से बोली, क्या लेकर आए हैं आप मिस्टर मेहरा? दिनकर जी, ये क्या है अंशु? हॉल में शोर सुन वर्तिका अभी राधे भी किचन से बाहर चले आए। सब अयांश को देख रहे थे और उसके बोलने का इंतजार भी कर रहे थे। अयांश आरवी के पास चला आया और उस बॉक्स की ओर देख बोला, देख लो जाकर क्या है। आरवी भौहें चढ़ाते, ये मेरे लिए है? मालती हंसते हुए, दिया आपको ही देखने को बोल रहे हैं जीजू, ऑफकोर्स आपके लिए। वर्तिका, जल्दी देखो ना आरवी, अयांश सरप्राइज गिफ्ट लेकर आया है तुम्हारे लिए। बॉक्स की ओर देखते, बट इतना बड़ा? सुजाता जी हैरान होते, सच में ये तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा गिफ्ट लाए हैं दामाद जी आरवी के लिए। संकट जी खुश होते, हाँ तो हमारे दामाद जी का दिल क्या कम बड़ा है, हमारी बेटी से बड़ा प्यार करते हैं, ये गिफ्ट तो कुछ भी नहीं है। क्यों आरवी बेटा? आरवी मुस्कुराते हुए, बात तो सही कही चाचू, ये कुछ भी कर सकते हैं, आई मीन कुछ भी गिफ्ट दे सकते हैं, सबसे अनमोल गिफ्ट तो ये खुद ही है हमारे लिए, पर फिलहाल हम ये सोच रहे हैं इस बॉक्स में है क्या। अभी देखोगी तभी पता चलेगा ना, बाहर से देख तो हम भी नहीं बता सकते ये है क्या। ये सुन सब हंस पड़े। राधे, फ्रिज जैसा घबरा है ना मालिक? दिनकर जी, बेटा तुम्हारे लिए फ्रिज लेकर नहीं आए हैं तुम्हारे अयांश बाबा, अंशु आरवी के लिए कुछ लाया है, वो देखेगी तभी पता चलेगा। आरवी बेटा देखो क्या है ये। जी दादू, कह आरवी ने अयांश की ओर देखा। अयांश ने पलकें झपका दी, आरवी बॉक्स के पास चली आई, बॉक्स पर रेड रिबन बंधा हुआ था। आरवी ने उसे खींचा और उसके चारों साइड को हटाने लगी। मैं हेल्प करता हूँ, कहते अभी चला आया और आरवी की हेल्प करने लगा। जो ही ऊपरी परत हटी, अंदर जो था उस बॉक्स के वो सबको नजर आया तो आरवी समेत सबकी आंखें फैल गईं, सबके ज्यादा आरवी, दिनकर जी और राधे की। तभी मालती बोल पड़ी, ये तो मंदिर है। सुजाता जी चौंकते हुए, सोने का मंदिर? अयांश आरवी के लिए मंदिर लेकर आया था जो आयताकार था, यानी लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम वाला, और वो सोने की धातु से निर्मित था। बहुत ही प्यारा डिजाइन था उसका, ऊपरी साइड छोटे छोटे तीन गुंबद लगे हुए थे जो उसको और भी ज्यादा प्यारा बना रहे थे। मंदिर के अंदर पीछे की साइड लाल रंग में ओम बना हुआ था और आगे उसकी मूर्ति तस्वीरें रखने की अच्छे से जगह भी बनाई हुई थी, जिस पर लाल कपड़ा बिछा हुआ था। आगे की तरफ छज्जे पर छोटी छोटी प्यारी प्यारी घंटियां लगी हुई थी और उन घंटियों के हर छोर पर लाल डायमंड, जो कि उस मंदिर पर चार चांद लगा रहे थे। उस मंदिर को देख कोई खुश हो रहा था तो कोई हैरान। अभी वर्तिका, चाचू, मालती मुस्कुरा रहे थे, चाची जी तो पहले ही चौंक चुकी थी, वहीं राधे भी पूरी तरह हैरानी से भर गया था। आज से पहले उसने मेहरा सदन में ये अजूबा जो नहीं देखा था। वहीं दिनकर जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे थे, पर उनकी नजरें भी अयांश पर ही ठहर चुकी थी, क्योंकि उनके लिए भी ये बात बड़ी विचित्र थी कि अयांश मंदिर लेकर आया है। सालों से जिसने मेहरा सदन में मंदिर का जिक्र तक नहीं किया, आज वो खुद मंदिर लेकर आया है। और आरवी, वो तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कैसे रिएक्ट करे, वो बस खड़ी उस मंदिर को एकटक देखे जा रही थी। तभी अयांश आरवी के पास चलाया, उसको अपनी तरफ घुमाया और उसका चेहरा हाथों में बोला, तुम्हारे पप्पा के लिए स्पेशल उनका घर, एक पल रुक कर, उनका रूम आ चुका है जो मेरे रूम से भी अच्छा है और प्यारा भी, सबकी ओर देख, है ना? सबने हाँ में सिर हिला दिया। अयांश फिर आरवी की ओर देख, तुम्हारे पप्पा को भी बहुत अच्छा लगेगा। राधे के रूम में तुम्हारे पप्पा का परिवार है और रिश्तेदार भी। राधे, राधे की ओर देख, उनको भी इस मंदिर में रखना। राधे, हाँ मैं सिर हिलाते, जी अयांश बाबा। अयांश फिर आरवी से, मेरी वाइफी के पप्पा अब अकेले नहीं रहेंगे, तुम सुबह शाम जैसे चाहो पूजा करना, बेफिक्र होकर, मैं कुछ नहीं कहूंगा ना ही रोकूंगा, ये घर तुम्हारा है, तुम जो चाहो कर सकती हो। दिनकर जी की ओर देख, दादू भी खुशी खुशी तुम्हारे साथ पूजा करेंगे, उनको बहुत पसंद है। मुझे अच्छा नहीं लगेगा ये सोच, आज तक यहाँ मंदिर नहीं आया, ना पूजा की, ना ही दादू मंदिर वगैरह गए, पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। दादू, आप आरवी के साथ घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं और घर के बाहर के मंदिर भी जा सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा, जो मन करे। आरवी की ओर देख, जिससे खुशी मिले वो सब करो तुम। अयांश की कही बातों से सबके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट बिखर गई। दिनकर जी की आंखें नम तो आरवी की तो आंखें छलक गईं। वो अपनी गाल पर मौजूद अयांश के हाथों को अपने हाथों में लेकर, हमारी खुशी के लिए आप हमारे बप्पा के लिए स्पेशल रूम ही ले आए, रोल बदल डाले यहाँ के। तभी अयांश ने उसे अपने हाथ छुड़ाए, उसकी आंखों से बह रहे आंसुओं को पोंछा और उसको अपने सीने से लगा लिया। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ वाइफी, कुछ भी। जानती हो ना तुम मेरी सबसे बड़ी खुशी हो, मेरी खुशियों का तुम ख्याल रखती हो तो मुझे भी तो रखना है। और हाँ, तुमसे ही तो यहाँ, दिनकर जी की ओर देख, सारी खुशियाँ हैं। ये सुन दिनकर जी ने अपनी पलकें झपका दी और आरवी ने अयांश पर अपनी बाहें कस ली। आरवी ने अभी राधे की मदद से दिनकर जी के रूम वाली साइड पर उस मंदिर को लगा दिया। शांति जी सोकर उठी तो आरवी ने उनको अयांश के मंदिर लाने के बारे में बताया और उन्हें मंदिर दिखाने हॉल में ले आई। आरवी की खुशी देख और उस सुंदर से मंदिर को देख उन्हें भी बहुत खुशी हुई। फिर दिनकर जी, शांति जी, शंकर जी, सुजाता जी हॉल में बैठे शाम की चाय पीने लग गए, जो आरवी उनके लिए लाई थी। राधे अभी वर्तिका किचन में खाना बनाने में लगे थे। मालती भी वहीं थी, पर वो मदद करने की जगह सेल्फ पर बैठी अपने फोन में डूबी मटर के दाने ठूस रही थी। अभी मालती से, ओए ध्यान से खाना, कहीं फोन के चक्कर में खराब मटर भी ठूस लो।
देखकर ही खा रही हूँ अभी भाई, खराब मटर है ही नहीं। मटर वाले बाउल को अभी को दिखाते हुए, खाऊंगी कैसे? अभिनव, यहाँ खराब मटर नहीं आती। खराब मटर नहीं, धोखे वाली मटर का हो। राधे भैया, यहाँ बिना छिलकों वाली, मटर के दाने ही मंगवाते हैं। छिलके वाली मटर लेकर आओ तो धोखा ही मिलता है। चार दाने आते हैं, दो खराब निकल जाते हैं। मालकी हंसते हुए, मम्मी से सीख लो कैसे लाते हैं छिलके वाली मटर, एक दाना भी खराब नहीं निकलेगा। छिलके भी इतने सुंदर होंगे कि खाने का मन करेगा। ये सुन सब हंस पड़े। राधे हंसते हुए, मटर के छिलके भी तो मीठे होते हैं। वर्तिका, खाकर देखें? हाँ, अभी हाथ ऊपर कर। मैंने भी। और दोनों ने वर्तिका मालती की ओर देखा तो दोनों ने नामे सिर हिला दिया और फिर चारों हंस पड़े। बाहर सब बातों में लगे चाय की चुस्की भर रहे थे। अयांश ऊपर रेलिंग के पास खड़ा था, जो सोफे के पास खड़ी आरवी को देख रहा था, जो मंदिर को एकटक निहार रही थी। तभी शंकर चाचू उससे बोले, आरवी बेटा, क्रमशः